दिन 8, बैतलहम का अलौकिक तारा। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। मत्ती 2 अध्याय उसका 2 पद। बार बार बाइबल हमारी जिज्ञासा को विस्मित करती है कि कुछ विशेष बातें किस प्रकार घटित हुई। यह तारा मजूसियों को पूर्व से यरूशलेम तक कैसे लेकर आया? यहां यह नहीं कहा गया है कि इसने इनकी अगुवाई की या यरूशलेम के मार्ग पर उनके आगे आगे चला। यहां मात्र यह कहा गया है कि उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा, मत्ती 2 अध्याय 2 पद, और वे यरूशलेम चले आए। और वो तारा कैसे यरूशलेम से बैतलहम की उस छोटी 5 मील की पैदल दूरी पर उनके आगे आगे गया, जैसे कि मत्ती 2 अध्याय 9 पद बताता है। और वो तारा उस स्थान पर कैसे ठहरा रहा जहां बालक था? उत्तर है, हम नहीं जानते। ग्रहों के संयोजन या धूमकेतु या अधिनव तारे या चमत्कारी ज्योतियों के संदर्भ में इसे समझने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु हम नहीं जानते। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस विचार में फंसकर ना रह जाएं, उसी बात पर विचार ना करते रहें, अर्थात उन सिद्धांतों पर जो अंत में केवल अनिश्चित हैं और जिनका आत्मिक महत्व बहुत कम है। और मैं आपको चेताने के लिए एक सामान्यीकरण करने का जोखिम उठा रहा हूं। ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातों पर विचार करते रहते हैं और उन्हीं में फंसे रहते हैं कि तारे ने कैसे काम किया और लाल समुद्र कैसे विभाजित हुआ और मन्ना कैसे गिरा और योना मछली से कैसे बचा और चंद्रमा कैसे लहू के रंग में बदल जाता है। सामान्यतः ये वे लोग होते हैं जिन्हें मैं ऐसी मानसिकता का मानता हूं जो अल्प महत्व की बातों में समय व्यतीत करते हैं। आप उन्हें सुसमाचार की महान प्रमुख बातों का गहराई से आनंद लेते हुए नहीं देखते हैं। परमेश्वर की पवित्रता, पाप की कुरूपता, मनुष्य की असहायता, क्रीस्ट की मृत्यु, केवल विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना, आत्मा के द्वारा पवित्रीकरण का कार्य, क्रीस्ट के पुनरागमन की महिमा और अंतिम न्याय, आप उन्हें किसी ऐसे नए लेख या पुस्तक के साथ सदा आपको मार्ग से भटकाते हुए देखते हैं जो उन्हें किसी अल्प महत्व के विषय पर विचार करने के लिए उत्साहित करती है, किंतु महान तथा मुख्य वास्तविकताओं के विषय में बहुत कम आनंद मनाया जाता है। परंतु इस तारे के विषय में एक बात स्पष्ट है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वो उसे स्वयं नहीं कर सकता है। वो मजूसियों का मार्गदर्शन कर रहा है जिससे कि वे परमेश्वर के पुत्र की आराधना कर सकें। बाइबल की विचारधारा के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति है जो सितारों को उद्देश्य के पीछे हो सकता है और वो स्वयं परमेश्वर ही है। इसलिए यह शिक्षा स्पष्ट है, परमेश्वर विदेशियों का मार्गदर्शन कर रहा है जिससे कि वे क्रीस्ट की आराधना कर सकें और वो इसको पूर्ण करने के लिए वैश्विक संभवता सार्वभौमिक प्रभाव और सामर्थ्य का उपयोग कर रहा है। लूका दिखाता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण रोमी साम्राज्य पर प्रभाव डाला जिससे कि जनगणना ठीक उसी समय पर हो सके तथा उस महत्वहीन कुंवारी को बैतलहम लाया जाए जहां वो एक बालक को जन्म दे और नबूवत पूरी हो सके। मत्ती दिखाता है कि परमेश्वर मुट्ठी भर विदेशियों को बैतलहम लाने के लिए आकाश के तारे को प्रभावित कर रहा है जिससे कि वे उसके पुत्र की आराधना कर सकें। ये परमेश्वर के कार्य करने की रीति है। उसने तब ऐसा किया था, वो अब भी ऐसा ही कर रहा है। उसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न राष्ट्र, समस्त राष्ट्र, मत्ती 24 अध्याय 14 पद के अनुसार, उसके पुत्र की आराधना करें। उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है जो आपके कार्यालयों में कार्यरत हैं और आपकी कक्षा में हैं और आपके पड़ोस में हैं और आपके घर में हैं। जैसा कि यूहन्ना 4:23 पद कहता है, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। हमारे पास मत्ती के आरंभ में अभी भी एक आओ और देखो की पद्धति है, परंतु अंत में यह पद्धति जाओ और बताओ की हो जाती है। उस समय मजूसी आए और उन्होंने देखा, अब हमें जाना है और बताना है। परंतु जो बात भिन्न नहीं है वह है राष्ट्रों के एकत्रीकरण में परमेश्वर का उद्देश्य तथा उसकी सामर्थ्य जिससे कि वे उसके पुत्र की आराधना कर सकें। यह संसार इस कारण से अस्तित्व में है कि सभी राष्ट्रों की अति उमंगपूर्ण आराधना द्वारा क्रीस्ट की महिमा हो।